ओम शांति, ओम शांति। तो अभी का सत्र है मुरली रिवीजन। आप सभी ने आज सुबह की मुरली सुनी, सभी को याद होगा क्या कहा बाबा ने आज। ज्ञान धन, ज्ञान धन का दान करने के लिए क्या जरूरी है? विचार सागर मंथन। और किसका विचार सागर मंथन चलता रहेगा? हाँ, जो ज्ञान धन बांटने का जिनके अंदर शौक होगा। अभी आपको कहा जाए कि कल आपको मुरली रिवीजन कराना है, तो ऑटोमेटिक अंदर में हमें फिर सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक अंदर में चलता रहता है। जब कोई लक्ष्य लेते हैं कि हाँ भाई ये करना है, तो ऑटोमेटिक अंदर में चिंतन चलता है। और ये ज्ञान धन कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? ज्ञान सागर शिव बाबा से। किस माध्यम से देते हैं? ब्रह्मा बाबा। और जो ज्ञान धन देते हैं उसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मुरली। तो अगर हम अपने अंदर ज्ञान धन का स्टॉक जमा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो रोज हम मुरली सुने। सुनते हैं सभी रोज मुरली सेंटर पर जाकर? ठीक है। हाँ देखो कितनी सुंदर बात आपने, है ना, सागर को हब कर लिया, ये हमारा यादगार। तो मैं बता रहा था कि हम सब, अगर हम कहते, जैसे अभी हमने पूछा आपने मुरली रोज सुनते हो, तो आपने कहा हाँ सुनते हैं, लेकिन एक मिनट अपने अंदर साक्षी होकर के देखें, क्या हम मुरली सुनते हैं? पहली बात तो हम ये देखें, ज्ञान धन तभी स्टॉक जमा होगा जब हम रोज मुरली सुनेंगे, लेकिन सुनने का मतलब क्या होता है बताएंगे? सुनने का मतलब, बिल्कुल ठीक बात बताया। जैसे माताएं कभी बोलती हैं, मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं, कितना भी बोलते हैं मेरी सुनता ही नहीं। कब बोला माने? जब उस बच्चे ने किया नहीं। माँ बोल रही है, बच्चा सुन भी रहा है, लेकिन जब वो बच्चा नहीं करता है, टाल मटोल करके भाग जाता है, तो माता कहती मेरी बच्चा मेरा सुनता नहीं। ऐसे हम मुरली सुनते तो हैं, लेकिन किया नहीं तो वैसे तो हम चार्ट भर देते, मुरली सुनी हाँ सुनी, योग किया हाँ योग किया, लेकिन मुरली सुनने का मतलब करना। तो जिस दिन आपने मुरली कोई एक बात प्रैक्टिकल में किया, तो उसी दिन समझो आपने मुरली सुनी। अगर आपने मुरली सुनी नहीं किया, तो आप उस दिन लिख दो हाँ आज मुरली मैंने नहीं सुनी, है ना। तो अब बताइए, अच्छा चलो अब ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन आप अपने आप से ही पूछ लो कि रोज हम मुरली सुनते हैं, तो व्रत लेना है कि हमें रोज की मुरली से कम एक बात हम गांठ बांध ले, वो मुझे करना ही है। अच्छा दूसरी बात, कई बार हम भाई बहनों में, कई भाई बहनें बोलते हैं हम मुरली सुनते तो हैं, है ना, अंदर रहता भी है, लेकिन अचानक कोई पूछता है तो उस समय फिर हम उसको क्या बोलते हैं? अचानक किसी ने कुछ पूछ लिया, आपने मुरली सुनी है लेकिन सामने वाले ने अचानक पूछा, तो उस सामने वाले को क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा? नहीं, आप अंदर में है लेकिन थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक अक्षर बताइए अंदर में है, और वो एक अक्षर बताता है और सारा इमर्ज हो जाता है, है ना, यही तो होता है ना। तो हम दूसरों को दान तब दे सकेंगे जब हमारे अंदर होगा, और हमारे अंदर भी तब होगा जब हम रोज की मुरली के ऊपर कुछ मंथन करेंगे। सुनते तो हैं लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। अब कई भाई बहने कहते हैं हमारा चिंतन चलता नहीं है। ऐसा जिसका कोई चिंतन नहीं चलता हो? चलता तो है ना चिंतन, चिंतन तो चलेगा। या तो हम मुरली का चिंतन करें, अगर मुरली का नहीं करते हैं तो व्यर्थ का चिंतन चलेगा। आप देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ बाबा कितने सुंदर सुंदर महावाक्य कितने वरदानों से है ना हमें भरपूर करते हैं, और कोई अचानक पूछता आज का वरदान क्या है तो वो उसी समय और 400 लोगों के बीच में बाबा ने आपको तुम मेरे दिल तक नसीन बच्चे हो, नैनों के नूर हो, इतने सुंदर सुंदर टाइटल दिए, वो भूल गया हाँ दोपहर तक। और किसी ने अगर 4 लोगों के बीच में पागल बोल दिया, तुम तो पागल है बुद्धू, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तो वो भूलता है उसकी, उसको हम सारा दिन इसने मुझे 4 लोगों के बीच में पागल बोला, हम पागल दिखते हैं क्या? ठीक है, मौका पड़ेगा तो हम भी इसको मजा चखाते हैं, है ना। कितना महीनों बीत जाता है, सालों बीत जाता है, लेकिन उसका वो पागल शब्द बाहर नहीं निकलता। देखो जो चीज हमें याद रखना चाहिए वो भूल जाती है, और जो चीज भूलना चाहिए वो, तो इससे क्या सिद्ध होता है? अंदर में कितनी सफाई की जरूरत है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मुरली रिवीजन तो करूंगा ही, लेकिन आपको हमेशा मुरली याद रहे, कोई भी अचानक पूछे आपको मुरली भूले नहीं, उसका मैं जो मैं खुद करता हूँ आपको टिप्स बताता हूँ। और ये सुना हमने दादियों के द्वारा, कई बार आपने ये सुना होगा, दादी हमेशा कहती थी कि जब हम मुरली लिखते हैं, हम सब लिखते थे, तो हम 4 डायरी बनाते थे, ज्ञान का अलग, योग का अलग, धारणा का अलग और सेवा का अलग, और 4 प्रकार की बातें उनमें। तो ये बातों से लेकर के इसी बात से मैंने प्रेरणा ली। हम सभी मीठे बच्चे वरदान स्लोगन आदि लिखते हैं, लेकिन वो एक है बना बनाया, है ना, बहन जी ने सुनाया और आपने नोट कर लिया, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करते, है ना। तो हम खुद मुरली के बीच से कुछ महावाक्य निकालें, वो भी लिखो, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुद भी तो मेहनत करें, कुछ निकालें। तो रोज की मुरली से 7 बातें। पहला, आज की मुरली से आप हेडिंग डाल सकते हो, आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए 7 सूत्र। पहला सूत्र, आज की मुरली से ईश्वरीय महावाक्य, जो एक लिखना है और जो आपको अंदर में लग जाए। रोज की मुरली में आप नोट करेंगे ऐसा कोई महावाक्य जो आपको लगने वाला, कोई नया ऐसे कोई निकलता है, नोट कर लो, है ना, ईश्वरीय महावाक्य के नीचे वो। दूसरा, आज की मुरली से स्वमान। तो आप लिखेंगे, आप एक मुरली से 100 स्वमान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, एक लिखना है, लेकिन जो लिखना है वो सारे दिन में उस स्वरूप में, उस स्थिति में रहना है, ठीक है ना। अगर हम स्वमान लिखेंगे तो आप मुरली उठाओ कम से कम 100 स्वमान निकलेगा, लेकिन वो हम केवल नोट ही करते रह जाएंगे, वो प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। आप अपने अंदर ये लक्ष्य बनाओ, एक ही लिखना है लेकिन मुझे वो सारे दिन में उसमें स्थित रहना है। तो दूसरा, आज की मुरली से स्वमान। तीसरा, आज की मुरली से योगाभ्यास, योग के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। आप देखेंगे आप योग के बारे में आपको नई रोज नए तरीके से, बाबा कहते ना ये कोई बोर करने वाला योग नहीं है, बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां बताई हैं, है ना, आज इस विधि से करो, कल उस विधि से करो। तो रोज की मुरली से हम देखें आज बाबा ने योग के संदर्भ में क्या कहा, उस तरीके से आप रोज नए तरीके से योग करो, नया नया तरीका रोज मिलेगा। तो आज मुरली मैं जब शाम को योग में बैठता हूँ तो मैं खास याद करता हूँ आज बाबा ने योग के संदर्भ में क्या कहा, क्या मैं उसी प्रकार से योग कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा, आज की मुरली से धारणा, एक बात नोट करनी है, बहुत बातें निकलेगी लेकिन बहुतों में नहीं जाना है, एक ही बात नोट करना है लेकिन व्रत रखना कि आज सारे दिन में ये मुझे करना ही है, मैं बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत बच्चा, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तो एक बात धारणा, कितनी बातें हो गई, चार। पांचवी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है, कई बार मैं ये खास करके टीचर्स बहनों को ये बात जरूर बताता हूं, भले हमारा रेस्ट छूट जाए, भोजन छूट जाए, लेकिन ये चीज ना छूटे, और वो है आज की मुरली से चिंतन, एक बात लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना, और चिंतन का सबसे अच्छा तरीका है लिखना। जो आप मुरली से एक बात लेकर के आप लिखेंगे ना, वो ज्ञान का खजाना आपका अपना बन जाएगा, वो जीवन में कभी भूल नहीं सकता, वही काम आएगा। और फिर हम जो आज बाबा ने कहा, दूसरों को ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी, शौक होगा, तो रोज की एक मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करें और लिख लें तो बहुत बहुत ही अच्छा है ना, कभी भूल नहीं सकता। आप देखेंगे योग आपका बहुत अच्छा लगने लगेगा, व्यर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, योग में एकाग्रता आ जाएगी और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, क्योंकि खुराक मिल रहा है ना ज्ञान के चिंतन का। तो पांचवी बात चिंतन, जैसे आज बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है, तो इसी बात का ले लो, विचार सागर मंथन कौन कर सकते हैं, विचार सागर मंथन करने की विधि क्या है, विचार सागर मंथन करने से क्या फायदा होगा, उससे क्या प्राप्तियां होगी, है ना, विचार सागर मंथन किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना, पांचवी बात आज की मुरली से चिंतन, छठा बात आज की मुरली से सेवा, सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा, और क्या हमने है ना भिन्न भिन्न तन से मन से धन से जन से संबंध संपर्क, बाबा सेवा की नई नई विधियां रोज की मुरली में बताते हैं, हमने क्या विधि अपनाई आज है? कई बार तो बाबा ये कहते हैं बच्चे तुम चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, सेवा के नए नए तरीके निकालो, नई नई युक्तियां निकालो, फिर बाबा देखते हैं बच्चों का विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है, तो बाबा खुद बताते हैं कि अच्छा बच्चे कभी शिव बाबा के मंदिर में चले जाओ, कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ, कभी हाँ शमशान में चले जाओ, कभी टिप टॉप होकर के चले जाओ, कभी गंगा के किनारे चले जाओ, कभी है ना प्लेन से पर्चे गिराओ, सेवा के तरीके बताते ना बाबा भिन्न भिन्न प्रकार के। अच्छा, तो इस प्रकार से है ना छठी बात सेवा, और सातवीं बात बाबा बहुत कहते हैं वो बात, लेकिन इसमें बहुत बच्चे इस बात में फेल रहते हैं, नहीं करते हैं, और बाबा की ये विशेष आज्ञा है, सातवीं बात आज की मुरली से स्व चेकिंग, चार्ट लिखना। ये जो छह बातें हैं इनको चार्ट के तरीके से, आपको इतना आनंद आएगा है ना, नहीं तो हम क्या अमृत बेले उठे मुरली सुनी भोजन पर योग युक्त रहे हा ना फिर बोर हो जाते छोड़ देते वही बात बार बार रिपीट, लेकिन आपको नया नया है ना रोज की मुरली से ये नई नई बातें रोज निकलेगी, तो चार्ट भी आपका रोज नए तरीके से होगा तो बोर भी नहीं होंगे। तो ये सात बातें आप निकालेंगे लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अलर्ट हो करके बैठेंगे तभी ये सात बातें नोट कर सकेंगे। और चूंकि आपने खुद मेहनत करके है ना पॉइंट निकाला है ना, एकाग्रचित होकर के सुने है ना, तो भूल भी नहीं सकती। तो आप इस प्रकार से मुरली लिख करके देखना, और मुरली हम संगठन में जाकर के सुनते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, और जो संगठन का बल होता है, जो वहां का वाइब्रेशंस होता है, वो और कहीं नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक चीज कि जब आप संगठन में मुरली सुनते हैं तो कितनी बड़ी आप सेवा करते हैं, वो प्रैक्टिकल में एक सुनो उदाहरण। रसिया के अंदर वहां की गवर्नमेंट ने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अपने कुछ सीआईडी भेजे, कहा जाओ और देखो ब्रह्मा कुमारी संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, वहां क्या सिखाते हैं। तो हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर का क्या नियम होता है, कोई भी नया आता है तो क्या करना पड़ता है, 7 डेज कोर्स। अच्छा, लगता है आप लोगों ने किया नहीं क्या, आप बिल्कुल से चुपचाप 7 डेज कोर्स करना पड़ता है ना, है ना, 7 दिन का कोर्स करने के बाद ही तो मुरली में अलाउ होता है। अच्छा, अब तो वो आए थे वहां चेकिंग करने, लेकिन चेकिंग करने के लिए है ना गुप्तचर आए बन करके, लेकिन उसके लिए तो 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो अलाउ कैसे होगा अंदर आने के लिए, और जब तक अंदर आएंगे नहीं तब तक उनको कैसे पता चलेगा क्या सिखाया जाता है। तो वो कोर्स किया, लेकिन किस है ना उनका ये लक्ष्य था कि मैं अंदर जाऊं और देखूं यहां क्या होता है। तो 7 दिन का कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद नेचुरली अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा और अपने गवर्नमेंट को जाकर बताए, भाई ब्रह्मा कुमारी संस्था तो बहुत अच्छी संस्था है, बहुत ऊंची बातें बताते हैं। अच्छा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहा इंडिया में है, भारत के अंदर राजस्थान में, तो कहा वहां जाओ वहां पता करो। तो यहाँ पर ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड चलता है, उसमें आए, वो अपना तब तक किसी को बताए नहीं अपना राज में कौन हूं, यहाँ आए पांडव भवन देखा, शांति वन देखा, ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम अटेंड किया, सारा सब कुछ देखने के बाद वो अपने गवर्नमेंट को जाकर के मैसेज देते हैं, क्या मैसेज दिया होगा। आपसे भी कोई पूछे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सारे विश्व में ये क्या ऐसी क्या बात है, तो क्या बताएंगे। भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, आपने सुना है कभी, क्या सुना है, वही मैंने आपने फटो से उत्तर दे दिया, तो ठीक बात। तो उन्होंने यही बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर एक सुबह सुबह संगठन होता है जिसको वो लोग बोलते हैं मुरली क्लास। ये मुरली का ही चमत्कार है कि सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था फैल गई है। तो ये सेवा कब हुई, जब आप संगठन में सेंटर पर जाकर के मुरली सुने तब हुई। अगर हमें सोचा रहे हमारे मोबाइल में तो आता है ना, हम नेट खोल करके हम देख लेते हैं पढ़ लेते हैं, तब ये होती सेवा नहीं होती। तो संगठन में जाने की कितनी बड़ी सेवा हुई, आप अपनी नहीं लेकिन सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं, संगठन में मुरली सुन रहे हैं तो सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान धन, ज्ञान धन बांटना है, लेकिन बांटेंगे तब जब हमारे अंदर होगा, हमारे हम ही खाली हैं, हम चले बांटने क्या बांटेंगे, जेब हमारा खाली क्या दूसरों को देंगे, जब अंदर होगा तभी तो देंगे। हम ज्ञान की शक्ति अंदर जमा कर रहे हैं, ज्ञान का बल जमा कर रहे हैं, लेकिन एक बात और भी देखना है, जितना जमा करने पर अटेंशन उतना ही अटेंशन कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। जैसे हमने अमृत वेला योग की, अपने अंदर शक्ति जमा की, मुरली सुनी, अपने अंदर शक्ति जमा की, सेवा किया, शक्ति जमा किया, और लीकेज कहां से हो जाता है, सारे दिन में व्यर्थ देखा सुना बोला किया तो लीकेज। तो क्या करना पड़ेगा? लीकेज को, अगर हमें अपने अंदर वो शक्ति जमा करके रखना है तो लीकेज को बंद करना पड़ेगा। और अगर हमने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, दुख दे दिया, तो लीकेज नहीं, वो होल हो जाता है, महीनों का इकट्ठा चला जाता है, खत्म। महसूस भी होता है जैसे दिल खा रही है, इसे कुछ नहीं अंदर बचा। तो अंदर में जमा होता रहे, तो जमा करने के लिए खास चिंतन बहुत जरूरी है। अभी हम एक मिनट के लिए है ना इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा जो कहते हैं विचार सागर मंथन करो, वो चीज हम तब करते हैं जब उसकी वैल्यू हमारे बुद्धि में होती है, जब उसकी फायदा क्या है, प्राप्ति क्या है वो हमारे। तो एक मिनट के लिए आप ये चिंतन करेंगे कि विचार सागर मंथन करने से क्या प्राप्तियां है, क्यों बाबा कहते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या है। अब आप खुद चिंतन करो इस बात के ऊपर एक मिनट, विचार सागर मंथन करने से क्या क्या फायदा है, क्या क्या प्राप्तियां हैं। ओम शांति। बताएंगे? बोलिए। एक तरफ, अच्छा दूसरी तरफ, अच्छा आप बताइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा हाँ जी, बहुत सुंदर। क्या होता है? अच्छा बहुत सुंदर, नए नए पॉइंट्स, बहुत सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात है कि जब हम सुनते हैं ना तो हमारे अंदर धारणा होगी, और फिर जिसके अंदर धारणा है ना उसके बोल का प्रभाव पड़ेगा। शोक भी होगा, उमंग गुस्सा होगा, और उसके बोल का है ना सामने वाले की। नहीं तो कई बार कई लोग कहते हैं आए हैं बड़ी ऊंची ऊंची बात सुनाने, प्रैक्टिकल में तो कुछ है नहीं, है ना, वो सामने वाला, लेकिन हमारे जीवन में है। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। धार्मिक प्रभाग महामंडलेश्वर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, 108 जगत गुरु, कौन कौन आप सबने देखा होगा जो पुराने होंगे, हारमनी हॉल में बड़े बड़े महामंडलेश्वर दादियों के सामने दंडवत प्रणाम, एकदम महात्माओं की सभा में, और ये बोले कि आप आपके अंदर कथनी करनी एक है, आप लोगों ने भगवान को पा लिया, हम तो आपने देखा देखो बताइए जी, देखो ये शब्द महात्माओं की सभा में कोई महात्मा बोले, ये बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है कि हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना, आप, लेकिन लोगों की नहीं, लेकिन आप हैं कि अपना भी बनाते हैं और सबका बनाते हैं आप जैसी हस्ती चाहिए, है ना अच्छा हाँ, शांति स्तंभ पर जब ये गीत बजा कि भगवान आपके घर का सिंगार जा रहा, तो महात्माएं जो इतने उनके अंदर अभिमान होता है ज्ञान का, उनके अंदर भी आंखों में आंसू आ गए। फिर दादी माँ कहने लगे कि आप मुझे फिर कब बुलाओगे, और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना सुंदर, दादी माँ आप हमें, आप अपने दो भाइयों को भेज दो ना हमारे वाइब्रेशंस, बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर बात बताई, ये सवा मुझे भी इमर्ज हो गया। आपने समझा आपकी दीदी ने क्या बताया कि यहाँ पर तब ज्ञान सरोवर नहीं था, पांडव भवन ही था, और पांडव भवन में, और दादी तो बड़े नशे के साथ, सब बाल ब्रह्मचारी, तो एक महात्मा ऐसे कैसे हो सकता है, है ना। तो वो रात में उठ करके, वो 2 बजे, तो अब पांडव भवन तो जहाँ तपस्या का वातावरण, उसको वो इतना पावरफुल वाइब्रेशंस, इतना प्योर वाइब्रेशंस की अनुभूति हुई कि महात्माओं की सभा में जब सुबह अपना अनुभव बता रहा था तो ये सारी बातें, कि मुझे तो संशय आया कि ऐसे ही कैसे हो सकता, लेकिन रात में जब यहाँ मैंने चक्कर लगाया तो देखा ये तो कोई पवित्रता का सागर हो, ये ऐसा स्थान है। तो देखो आप लोगों ने, है ना, जैसे बाबा कई बार विदेशियों को कहते हैं कि ये विदेशी आए तो बाबा ने, बाबा का जो टाइटल है वो विश्व कल्याणकारी है, तो ऐसे बाबा जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन बनाते हैं, तो वो जैसे कि बाबा को प्रत्यक्ष किया। कई बार सूरज भाई भी अपना ऐसे अनुभव सुनाते, कहते हैं कि जब हम शाम के समय कई बार नक्की लेक की तरफ चक्कर लगाने जाते थे, तो कहा कई ये आर्य समाजी मिलते थे ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते थे, तो कहा मुझे बड़ा गुस्सा आता था उनके ऊपर, लेकिन बोलता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर आता था ये क्या उल्टा सुल्टा, जब इनको कुछ पता नहीं है तो क्या बोल रहे हैं। लेकिन कहा अंत में एक शब्द ऐसा बोलते थे कि हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। क्या बोलते थे कि आपका ज्ञान ठीक नहीं, ये वो बहुत सारी बातें बोल करके, कहते लेकिन आपके बाबा बहुत अच्छे थे आपके बाबा बहुत अच्छे थे। तो कहा फिर मैं उनको एक ही शब्द बोलता था, भाई आप सोचिए जिसका बाबा बहुत अच्छा तो उसके बच्चे कैसे होंगे इसके बच्चे भी तो अच्छे होंगे तो आप सोच, मुझे कई बार मैं सोचता हूं कि देखो दुनिया में कितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, है ना, लेकिन उसमें का हेड कौन है, कोई गुरु गोसाई विद्वान पंडित यही तो होंगे ना आज भी। जी जी, सदगति नहीं दे सकते। जी देखो कितनी ऊंची बात बाबा ने बताई। तो मैं कि कई बार, हाँ ना, दुनिया में कितनी संस्थाएं लेकिन हेड कोई गुरु गोसाई धर्म स्थापक ले लो, लेकिन आप किस संस्था से जुड़े हैं, आप किस संस्था से जुड़े हैं, आप सोचिए। यहाँ कोई गुरु गोसाई विद्वान पंडित आचार है कोई हेड नहीं ना, कौन है हेड, है ना। और आप सोचिए ना, हमें तो भाई बहुत खुशी होती इस बात का, और हर कल्प कल्प ये ड्रामा में नूद हो गया, ऐसे नहीं कि दूसरे कल्प में दूसरा कोई आ जाएगा, हर कल्प कल्प के लिए हमें ही भगवान मिलेगा, हमें ही भगवान आकर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाएगा, दूसरा और कोई आने वाला नहीं है, हम ही हर कल्प देवता बनेंगे। अब दुनिया के मनुष्य तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी नए को आप डायरेक्ट ये बात बताओ कि हम देवता बनने वाली आत्मा है, तो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा पहले, क्या बोला, उसको तो पहले समझ में नहीं आया क्या बोल दिया, आपसे फिर से पूछेगा क्या बोला, एक बार फिर से तो बोलो क्या बनने वाली हो, हाँ? आपको नीचे से ऊपर, आप देवता बनने वाली आत्मा है ना, उसके तो अंदर में ये बात जाएगा ही नहीं, लेकिन हम रोज सुन सुन करके उसको थोड़ा सा कामन समझ लिया। आप ये सोचो तो सही, बाबा के महावाक्य, बच्चे तुम देवता बनने वाली हो, मैं आया हूं तुमको देवता बनाने, विश्व की बादशाही देने, हथेली पर वहिस्त लेकर के आया हूं, कितनी ऊंची बातें। तो अगर हम इसके चिंतन में जाएं, गहराई में जाएं, तो वो नशा वो खुशी अच्छा। और आगे बाबा ने प्रश्न उत्तर में क्या कहा, सदा तंदुरुस्त कौन रह सकते हैं, यही बात है ना हाँ, जो जितना ज्ञान घास बाबा ने कहा, ज्ञान घास को खाकर जितना उगारते हैं, अर्थात उगारना माना मंथन करना, जितना मंथन करते हैं उतना फिर क्या होता है, हाँ हजम होता है ना। तो मंथन करने की आदत उन्हें तंदुरुस्त बना देती, वो तंदुरुस्त रहते, वो फिर बीमार नहीं पड़ते। हाँ, और हाँ, शौक रहेगा, व्यर्थ से विकारों से बचे रहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रहे, एक अव्यक्त मुरली मुझे याद आ रही है, तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल में भोजन शरीर के लिए जरूरी है, शरीर हमारा शक्तिशाली रहता है, पावरफुल रहता है, और अगर एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा? वीकनेस लगेगा, है ना, कमजोरी कमजोरी, कुछ किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए ये ज्ञान का भोजन जरूरी है। लेकिन शरीर के लिए कोई कोई ऐसी चीज है, वो जो अगर हमने भोजन के ऊपर अटेंशन नहीं रखा, मिर्च मसाला तली वाली चीजें, है ना, पकोड़ा समोसा खा लिया और खाते रहते हैं, चटनी अचार बहुत अच्छा लगता है, वो खाते रहते हैं, तो व्यक्ति का क्या होता है, शरीर मोटा होता जाता है, है ना, क्योंकि उसको परहेज नहीं है, जो आया सो खाया। ऐसे ही एक चिंतन है, जिस चिंतन से आत्मा शक्तिशाली बनती है, जिस चिंतन से आत्मा की चमक बढ़ती है, जिस चिंतन से हम माया जीत विघ्न जीत बनते हैं। लेकिन एक चिंतन और है जो वो हमारी शक्तियां खत्म कर देती है, हमारी खुशी को छीन लेती है, हमें दुखी कर देती है, वो है निगेटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन जो बाबा की मुरली से मिलता है, समर्थ चिंतन जो बाबा की मुरली से मिलता है, वो हमारी शक्तियां बढ़ाती है, और व्यर्थ चिंतन हमारी शक्तियां घटाती है। व्यर्थ चिंतन में, है ना, लेटेस्ट समाचार, कोई आज का समाचार सुना, हाँ अच्छा, हमने कहा क्या भाई ऐसा क्या, फिर और उसमें जो आज बाबा ने कहा, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, हाँ एक कान से सुनकर, और अगर हम सुनते हैं तो उसी का क्या चलेगा, तो जब व्यर्थ का चिंतन चलेगा तो हमारी बुद्धि क्या बनेगी, वहां शरीर मोटा बनता है यहां, और जब बुद्धि मोटी बन गई तो मोटी बुद्धि उड़ेगी परमधाम में, उड़ने की कोशिश करेगी लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाएगी, उसको फिर नींद आ जाएगा, थक जाएगी। योग में जब नींद आती है ना, क्यों आती है, क्योंकि हम ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलता है, नींद आ जाती है। जैसे यहाँ शरीर मोटा होता है जिसका, तो थोड़ी देर चलेगा वो हांफने लगेगा, फिर बैठ जाएगा, या किसी का सहारा लेगा, किसी का हाथ पकड़ कर चलेगा। ऐसे बुद्धि मोटी हो जाएगी तो पूछेंगे भाई योग कैसे लगाऊं, सहारा ढूंढेगा ना, योग कैसे लगाऊं, और फिर इधर उधर की बातें याद आएगी, है ना। तो हमें देखना है कि हम ज्ञान का ही मंथन करते हैं। एक बार दादी जानकी जी से किसी ने पूछा, दादी आप तो कहते हैं कि ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन हम तो देखते हैं कि आप सारे दिन में ज्यादा बोलते भी हैं, ज्यादा सोचते भी हैं। ज्यादा सोचते माना ज्यादा बोलते माना, सारा दिन क्लास कराती रहती ना, और ज्ञान का मन। तो दादी ने यही कहा कि बहन ये भी सोचना है, क्या हमें सोचना है, क्या बोलना है, और क्या नहीं सोचना है, क्या नहीं बोलना है। एक सोच और बोल से हमारी शक्तियां बढ़ती है, और दूसरे सोच और बोल से हमारी शक्तियां घटती भी है। तो ज्ञान के बारे में जितना चिंतन मंथन करेंगे या ज्ञान जितना सुनाएंगे, तो उसमें शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, है ना। तो ये हमारी बढ़ाती है, खुशी भी होगी, जितना आप ज्ञान सुनाएंगे आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा, खुशी होगी। तो आप चाहते हैं, आज भी बाबा ने कहा ना तंदुरुस्त, जब तंदुरुस्त की बात सुना तो मुझे याद आया, बाबा ने एक शायद 88 के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, देखो कोई डॉक्टर आता है और तो हमारी भीड़ लग जाती है लोगों, हम अपना अनेक प्रकार के घुटना दर्द, कमर दर्द, बैक पेन, अनेक प्रकार के हम उससे पूछने लगते हैं, और बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई है। बाबा ने कहा जो बच्चे पूरा समय योग युक्त होकर भोजन करते हैं, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, जो बच्चे पूरा समय योग युक्त भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन आ जाते हैं। विटामिन की कमी के कारण ही तो बीमारियां आती है ना। अच्छा अब देखिए, योग युक्त होकर भोजन करेंगे तो भोजन करने की स्पीड क्या क्या होगी, धीरे धीरे या जल्दी जल्दी? धीरे धीरे। डॉक्टर लोग भी क्या बोलते हैं, धीरे धीरे करो या जल्दी जल्दी? धीरे धीरे करो। तो कितनी सुंदर विधि है कि हम योग युक्त होकर करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हो जाएगा, सारे विटामिन आ जाएंगे। और बाबा ने, बाबा के महावाक्य, वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाता है, वो भोजन दवा का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। माना कैसी भी बीमारी आप योग युक्त होकर भोजन करने से आप खत्म कर सकते हैं। ये हम करें प्रैक्टिकल में, हृदय भी शुद्ध हो जाता है। और बाबा ने कहा आप योग युक्त होकर भोजन करोगे ना तो, और दूसरों को हाँ योग युक्त होकर के भोजन खिलाओगे तो बाबा ने कहा किसी के बुद्धि को भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मानो आपका बच्चा है कुसंग में जा रहा है, व्यसन कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आप योग युक्त पूरा समय योग युक्त होकर भोजन बनाओ और भोजन उसको खिलाओ, उसका रिजल्ट देखो आप। हाँ हाँ बहुत सुंदर बात बताई। क्यों ये चीज हम प्रैक्टिकल में यहाँ देखते हैं, जब यहाँ पर मेहमान आते हैं और उनका 3-4 दिन का प्रोग्राम पूरा होता है तो लास्ट दिन कौन क्या क्लास कराया उनको याद नहीं रहता, लेकिन ये जरूर रहा है कि हम डाइनिंग हॉल में गए, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए भोजन खिलाया और बहुत सेवा की, फिर वो चीज जीवन भर उनको भूलता ही नहीं है। और कभी हमेशा भले वो ज्ञानी बने या ना बने लेकिन हमेशा हमेशा के लिए सहयोगी बन जाते, भाई हम आपके मधुबन गए थे, क्या प्यार है, क्या मुस्कुराते हुए सेवा करते हैं, क्या निस्वार्थ भावना है। आप देखिए ज्ञान की बातें एक तरफ, लेकिन जो हमने प्यार से मुस्कुराते हुए रूहानियत में रहकर जो सेवा की वो जीवन भर के लिए उनको सहयोगी बना देता है। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा खाना खाया, खाना खिल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आतम भाई को तो आप सब जानते ही हैं, मैं प्रैक्टिकली बात बता देता हूँ। तो जब वो आए थे सेवा में तो बता रहे थे कि मेरे को ना जब ये भोजन खिला भोजन बनाने की सेवा मिली तो हमने सोचा ये क्या, मैं इतना गोल्ड मेडल लेने वाला व्यक्ति और ये भोजन बनाने की सेवा, और कोई सेवा नहीं ऑफिस, हमारा तो ऑफिस लायक कोई सेवा मिलनी चाहिए था। तो कहा मैं एक बार बाबा से मिलने गया, जब बाबा से मिलने गया तो बाबा तो मन की बात जानते ही है, बाबा ने कहा बच्चे अपनी सेवा से संतुष्ट हो, तो मैं क्या बोलू मैं तो असंतुष्ट था, लेकिन बाबा के सामने बोलू क्या मैं असंतुष्ट हूँ, ये तो नहीं बोल सकता ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपनी सेवा से संतुष्ट हो, फिर बाबा ने कहा जब फिर भी ये चुप रहे तो बाबा ने कहा बच्चे योग युक्त होकर भोजन बनाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 1000 आत्माओं को ज्ञान सुनाने पर, ठीक है ना। अगर आपने योग युक्त होकर भोजन बना दिया तो कितना सेवा कितना पुण्य मिल गया। माताएं याद रखना कितना पुण्य मिलेगा, 1000 आत्मा को ज्ञान सुनाने पर जितना पुण्य मिलता है, लेकिन पूरा समय योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे तो तो योग युक्त होकर भोजन बनाना है और खिलाना भी है। कितनों के बंधन कट जाते हैं योग युक्त होकर भोजन बना उन्होंने बनाया और उनके बंधन कट गए। तो बहुत सारी बातें हैं तो कहने का भाव, लेकिन कई बार कईयों की ये शिकायत होती कि आपने बताया बहुत अच्छा है, हम स्टार्ट भी करते हैं बाबा की याद में भोजन करना, उसके बाद बाबा की याद कहाँ चली जाती है और पूरा भोजन हो गया बाद में याद आया, अरे तो भोजन योग युक्त होकर के करना था, ये तो भूल ही गया। ऐसे जैसे एक बार मैं क्लास करा रहा था तो एक माता ने कहा, भैया क्लास तो बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छी योग युक्त भोजन खाने की विधि आपने बताई है ना, प्राप्ति बताई, लेकिन आप ये विधि भी बता दो कि पूरा समय योग युक्त रहूं कैसे, हम तो भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ये भी बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं मेरे बहादुर बच्चे वे हैं जो योग युक्त होकर के भोजन खाते और खिलाते हैं। तो हाँ, अच्छा अच्छा जी हाँ, देखो ये जहाँ अरे भावना बाहर दुनिया में भी भावना का फल मिल जाता है, और जो बाबा के ज्ञानी योगी बच्चे हैं उनके अंदर तो अथाह शक्तियां हैं, वो जो संकल्प करेंगे तो होगा ही। तो कौन सी बात सुनाने जा रहे थे? हाँ विधि, पूरा समय योग युक्त होकर भोजन करने की विधि। तो फिर बताया देखो, हम जैसे एक गिट्टी खाए तो आप अनादि स्वरूप में पहुंच जाओ परम धाम में, जब तक वो एक गिट्टी पूरा अंदर जाए तब तक परम धाम में बाबा को देखते रहो, बाबा से शक्ति लेते रहो। दूसरी गिट्टी खाया तो कहां पहुंच जाओ? आदि स्वरूप में, स्वर्ग में, अपने उस है ना उस दृश्य को सामने लाओ, मैं देव स्वरूप में स्वर्ग में हूं। तीसरी गिट्टी उठाया तो मंदिर में भगत हमें खिला रहे हैं, भगत मुझे भोग लगा रहे हैं। और चौथी गिट्टी उठाओ तो एक चीज ये आप अनुभव कर सकते हो, आपने देखा ना बाप दादा कैसे दादियों को खिलाते हैं, तो आप दादी की जगह पर आप अपने आप को देखो है ना, बाप दादा बड़े प्यार से दृष्टि देकर के मुझे खिला रहे हैं। और कभी आप ऐसा अनुभव करो कि हम भी गिट्टी उठाए और बाबा के, कभी बाबा आपके मुख में डाल रहे हैं और कभी आप बाबा के मुख में डाल रहे हैं। और थोड़ा सा कान, ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने बैठा हो और आप उसी के मुख में डाल दे, वो भी सोचे कि क्या हो गया इनको है ना। एक गिट्टी बाबा हमारे मना, वो अंदर की समझने की बात है ना, बाबा हमें खिला रहे हैं, हम बाबा को खिला रहे हैं। और पांचवा फिर फरिश्ता स्वरूप, हाँ यही ब्राह्मण स्वरूप में ये हो गया, बाप दादा के साथ हाथों से खाना, और पांचवा फरिश्ता स्वरूप में वतन में बाप दादा के हाथ। तो पूरा समय आपका पांचों स्वरूप का अभ्यास हो जाएगा और पूरा समय योग युक्त होकर भोजन। अच्छा आगे बढ़िए, और आगे बाबा ने क्या कहा? हाँ ये मुरली के बीच में बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात, कि जिनको सर्विस का शौक होगा वो विजय माला का दाना बनेंगे, विजय रतन, विजय माला का मड़का है ना। ऐसे नहीं कि सर्विस के लिए कहा गया तो हमारा पेट दर्द है, हमारा सिर दर्द है। हाँ कई बार ऐसा भी होता है, आप सेवा करके आए, बाबा की मुरली 97 की अवितवाणी, बाबा ने उसमें कहा कि कई बच्चे कहते हैं देखा सारा दिन सेवा किया, बहन जी ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। ऐसे बाबा ने कहा बताओ सेवा करने का क्या फायदा है ना, और थोड़ा चलो अच्छा पानी नहीं पूछा, थोड़ा महिमा ही तो कर देना चाहिए था कि हाँ तुम बहुत सेवा करके आए हो, हाँ एक बात भी नहीं किया, एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम ये क्यों सोचते हो कि बहन जी ने नहीं पूछा, अरे भगवान तो पूछ रहा है ना, भगवान की डिक्शनरी में तुम्हारा नाम है, और तुम चाहते हो कि बहन जी हमारी महिमा करें। क्या क्या चाहिए? बाबा ने कहा देखो ये संगम युग वरदानी युग है, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आप सेवा करने के बाद नाम मान शान महिमा चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन कमी किस में हो जाएगी? जो 21 जन्मों का भाग्य है उसमें कमी पड़ जाएगी। तो क्या चाहिए, अल्पकाल का नाम मान शान या 21 जन्मों का भाग्य? लेकिन हम कई बार कहते हैं हाँ वो भाग्य तो ठीक है, वो तो चाहिए ही, लेकिन उसको किसने देखा, थोड़ा तो अभी भी तो चाहिए। थोड़ा चाहिए हाँ? बाबा ने कहा बच्चे आपने सेवा किया है, आपका नाम मान शान सब कुछ होगा, लेकिन कई बार हम इतने उतावले हो जाते हैं कि हम खुद ही वर्णन करना चालू कर देते हैं, मैंने ये किया वो किया। जब चारों ओर से हम सुनाना चालू कर देते हैं ना तो वो गलती हो जाती है, वो ठीक नहीं है। दूसरा तो करेगा ही, आपने सेवा किया सब कोई महिमा करेगा। हाँ जब हम खुद सुनाना चालू कर देते हैं मैंने ये किया। एक अव्यक्त मुरली मुझे याद आ रहा, बाबा ने कहा आपने सेवा किया और यदि आपको मैंपन आया, अभिमान आया कि मैंने किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो बाबा ने उसमें कहा 95% कट कर दिया। और अगर याद आया कि नहीं बाबा ने कराया, करण करावन हार बाबा है, बाबा जैसा करा रहा मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो करा भी वही रहा है तो कर भी वही रहा है, अगर ये स्मृति है तो 100% मार्क्स जमा हो गया। तो सेवा सेवा में कभी भी बहाना। कौन सी पॉइंट चल रही थी? हाँ सर्विसेबल, जो विजयी रतन बनते हैं। और बाबा ने क्या कहा? हाँ तो जब हम इस तन के द्वारा है ना, जितना हम इस तन को सेवा में लगाएंगे, आपको प्रैक्टिकल घटना इस कोरोना काल का ही बता दूं। एक भाई था, उसके पूरे शरीर में फोड़े, पूरे शरीर में फोड़े आ गए थे, तो वो जितना ही ट्रीटमेंट करता था उसको और ही वो बढ़ता ही जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया अचानक, मुझे अचानक पता नहीं जैसे कोई ग्रहचारी या कोई पाप कर्म जो उसके पूरे शरीर में बढ़ता ही जा रहा था और दवाई का भी रिएक्शन हो रहा था। तो पांडव भवन की बात है कि कोरोना काल के समय लेबरों की सबकी छुट्टी हो गई, फिर उसने ना देखा कि लेबरों की छुट्टी कोई लेबर आ नहीं रहे हैं, तो जो डस्टबिन के डिब्बे थे ना वो सारा डस्टबिन के डिब्बे इकट्ठा करता, डस्टबिन खाली करता, डस्टबिन धुलाई करके फिर रखता स्थान पर। आप अचानक क्या हुआ विश्वास नहीं मानोगे कि 15 दिन के अंदर सारा उसका बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। जो वो सालों से परेशान था उसका बढ़ता जा रहा था एकदम ठीक। दवाई का रिएक्शन, दवाई भी उसको कुछ काम नहीं कर रही थी। क्या हुआ अब लोगों ने देखा, अरे भाई इतना दिल से, अब जो भी देखता भाई इतना दिल से सेवा कर रहा है, बहुत अथक सेवादारी है, सबके दिल से दुआएं निकलता। तो क्या हुआ, जो लोगों के दिल से दुआएं निकला, लोगों के दिल से तो निकला लेकिन बाबा की तरफ से भी तो दुआएं मिली, तो वो सारी दुआएं दवा का रूप बन गया। तो कैसी भी बीमारी अगर हम बाबा के यज्ञ में, बाबा के सेंटर पर हम दिल से सेवा करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं। अच्छा फिर बाबा ने कहा, बाबा जो मीठी मीठी, वही बात बाबा ने कहा कि जो बाबा मीठी मीठी बातें सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, और उल्टी सुलटी बातों को एक कान से सुन दूसरे कान निकाल देना है। और मानो आपको कोई सुनाने आ जाता, आपसे बड़ा है और आपको सुनाने आ जाता, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको वहां रहना पड़ता है, आप आपसे सीनियर है, आपको सुनना पड़ता है, तो क्या करेंगे? बाबा ने तो कहा एक कान से सुन दूसरे कान निकाल दो। तो हाँ, कई बार ना हम हा में हा मिलाते हैं, हम इंटरेस्ट ना दिखाएं। जब हमने हा में हा मिलाया, इंटरेस्ट दिखाया, तो उसकी भी और जब भी उसको इधर उधर की बातें इकट्ठी होगी, वो किसके पास लाएगा? आपके पास लाएगा। जिसको बाबा कहते हैं कि माया को आपने आह्वान किया और आह्वान के साथ आपने चाय पानी भी पिला दिया। अब आपने चाय पानी पिला दिया तो माया दूसरी बार कहां जाएगी? ये हमारे ग्राहक अच्छे हैं, इनके पास जाने से ये बुलाते भी है तो आव भगत करते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं, चलो इनके पास। तो जब भी उधर उसको इधर उधर की फालतू व्यर्थ बातें किचड़ा इकट्ठा होगा, ला करके आपके पास डाल जाएगा। तो किचड़ा कहां डाला जाता है? तो हम क्या बन गए? डस्टबिन का। बाबा हमें क्या बनाने आए हैं और हम क्या बन जाते हैं? सोचे, बाबा बनाने आए हैं हमें चैतन्य हीरा, हम बन जाते हैं डस्टबिन का डिब्बा। तो क्या बनना है? हीरा बन करके रहना है ना, डिब्बा तो नहीं बनना है ना। और जब व्यर्थ बातें, समझो व्यर्थ बातें हम बोल रहे हैं इधर उधर की, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं ना, वो इतना इंटरेस्ट होता है कि घंटों बीत जाता है, पता नहीं चलता। तो जब भी ऐसा हो तो हम ये सोचें कि हमारे मुख से जो ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द धुआं बन करके बाबा के आंखों में लग रहा है, वतन में, और बाबा वहीं से मना कर रहा है, बच्चे बस करो बस करो। हाँ? तो ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा? हम बोल रूप व्यर्थ बोल रूपी धुआं निकालते जाएं और उधर बाबा की आंखों में लगे, अच्छा है क्या? तो ये सोचेंगे तो ब्रेक लग जाएगा। आगे बाबा ने क्या कहा? हाँ, अभी धारणा सार बाकी है। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, तो सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान, गुणों का दान, ज्ञान का दान। बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञान का दान कहाँ करना और गुणों का दान कहाँ करना? ज्ञान का दान बाहर, है ना, क्योंकि बाबा के आप आपस में, खैर वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले को अहम भी आ सकता है, ये मुझे सुनाने आया है, हमें पता नहीं है क्या? लेकिन हम कर्म के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, गुणों के द्वारा, चाल चलन चेहरे द्वारा, मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, जैसे कई बार बाबा कहते ना कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते, वो प्रैक्टिकल जीवन में देखना चाहते हैं। तो मेरे परिवार में सारा परिवार ज्ञान में आ गया, लेकिन मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं आए। और वो कहते, अरे वो कथा भागवत कराने जाते थे, कहते मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझे भगवान नहीं मिला, ये कहते मुझे भगवान मिला है। हम लोग कहते ऐसे भगवान सस्ता है क्या? हाँ, तुमको मिल जाएगा, मैं सारा जीवन कथा भागवत कराने में बीत गया, मुझे भगवान नहीं मिला, तुमको भगवान मिल जाएगा। लेकिन मैं तो छोटा ही था उस समय, 4-5 साल का, लेकिन मैं देखता था कि पिताजी जब दूसरे ब्राह्मण हमारे घर पे आते थे तो उनसे बड़ी महिमा करते थे, कहते थे भाई ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्म देखना है तो मेरे बच्चों के अंदर देखिए। घर में आते थे तो डांटते थे और दूसरों से महिमा करते थे। आखिर हम लोगों की दिनचर्या देख करके, जीवन शैली देख करके, एक समय आया कि वो भी ज्ञान में आ गए। तो ये होता है जो बाबा कहते हैं ना कि आपको देख करके, है ना, आपको देख करके। कईयों के अनुभव हैं कि भाई ये आप सदा खुश रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, है ना, पूछते हैं ना। कई ऐसे ज्ञान में आए कि, और अगर हमारा चेहरा लटका हुआ हो, उदास हो, हम भले बोल रहे हैं कि हमें भगवान मिला है, भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन चेहरे में खुशी ना हो, रौनक ना हो, तो सामने वाला मानेगा? वो तो कहेगा मुझे विश्वास नहीं पड़ता है कि आपको भगवान मिला है, चेहरे पर 12 बज रहा है कह रहे हैं भगवान मिला। और अगर हम खुश रहते हैं तो हम किसी को ज्ञान सुनाए या ना सुनाए, लेकिन हमें देख करके वो खुद पूछेगा आप कहाँ जाते हो, आपको क्या मिला है, हमें भी ले चलो वहां, ऑटोमेटिक वो आएगा। तो साहब को देखकर वो भी परिवर्तन हो जाते हैं। ये भी सेवा, बहुत सुंदर, आपने बहुत पॉइंट याद करके रखा। अच्छी बात है। अच्छा, तो बाबा कई बार कहते हैं कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट आ जाए आपको समझाने की कोशिश करे कि नहीं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, चैतन्य आत्मा के अंदर एक ऊर्जा है जिसके आधार से शरीर चल रही है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, तो आप मानोगे? आप नहीं मान सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल पूरा निश्चय है कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, धर्मात्मा आ जाए, आपको समझाने की कोशिश करे, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको ये बात पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूं। अब बाबा ने कहा एक स्टेप और आगे बढ़ो, न केवल मैं आत्मा लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, उसके चिंतन में जाओ, है ना। मैं कौन सी आत्मा, आत्मा तो सारी दुनिया है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझे कौन मिला है, मुझे मेरे ऊपर किसकी दृष्टि पड़ी है, किसने मुझे पसंद किया है, है ना, किसकी हम छत्र छाया में आ गए हैं। अच्छा, वरदान, पवित्र स्वरूप की स्थिति में रहे, गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस भव। आप लोग बड़े होशियार हैं। सारी मुरली याद करके रखे हैं, उत्तर देने में बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा होली हंस अर्थात जो गुण रूपी मोती ग्रहण करे। आपका स्वरूप क्या है और आपका कर्तव्य क्या है? स्वरूप है पवित्रता और कर्तव्य है गुण रूपी मोती ग्रहण करना। तो जो कुछ हम दूसरों में देखते हैं वही हम हमारे अंदर, गुण देखेंगे तो गुण आएगा, अवगुण देखेंगे तो। अभी देखो बाबा हमारे गुणों को देखते, गुणों का वर्णन करते, है ना, हमें क्या बना दिया। और वही चीज जो बाबा ने किया वही चीज पूरी तरह से दादियों ने फॉलो किया, है ना। हमने कई बार देखा कि किसी जिसे मानो किसी से कुछ अनबन भी हो गया, किसी से कुछ ऊपर नीचे हो गया, अब हम सोचते हैं इससे ना गलती हो गई, अब इसको दादी अच्छे से क्लास कराएंगी, इसको डांट पड़ेगी। लेकिन वो दादी के पास गया और दादी ने उसका, और तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर बहुत विशेषता है, मानो उसकी विशेषता उसका उमंग उत्साह दिला करके और ही उसको। तो वो गुण अवगुण खत्म कर दिया। जैसे आप प्रैक्टिकल में अपने घरों में देख लीजिए, मैं कई बार मिसाल देता हूं कि जैसे माताएं हैं, कई बार कहते हैं ना हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं सुनता। आपके घर में कोई मेहमान है और चार लोग आए हों, चार लोगों के बीच में आप अपने बच्चे को कहो ये मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सपूत है, कभी ना शब्द तो बोलता है, जो हमेशा ना शब्द बोलता हो, आप झूठ ऐसे ही बोलो चार लोगों के बीच में, ऐसा लायक है, ऐसा सपूत है, और हमेशा हाँ जी बहुत आज्ञाकारी। फिर आप कहोगे बेटा जरा एक गिलास पानी लाना, लाएगा कि नहीं लाएगा? बिल्कुल नहीं सुनता हो, लेकिन उस समय क्यों लाएगा, इज्जत की सवाल है ना। अभी चार लोगों के बीच में इतनी महिमा हुई है, नहीं लाएंगे तो, है ना। और यही आप रोज कर रहे हैं तो धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी। फिर तो हमारे हाथ में है, बाबा ने तो यही किया ना। आप अव्यक्त मुरली उठा के देखो, कोई भी अव्यक्त मुरली उठा के देखो, अव्यक्त मुरली में शुरुआत में क्या होता है, हाँ इतने सुंदर सुंदर टाइटल, तुम बच्चे है ना जिसे धर्म आत्मा महान आत्मा नहीं पहचान पाए, आपने पहचान लिया, जान लिया, बच्चे बन गए। फिर दूसरे पेज में बाबा शिक्षा देना चालू करेगा, पहले शुरुआत में शिक्षा नहीं, पहले उमंग गुस्सा, फिर दूसरे पेज में शिक्षा, फिर तीसरे पेज में, पहले पेज में बाप, दूसरे पेज में टीचर, तीसरे पेज में अच्छा बच्चे, अब दिल करो सतगुरु बन करके भिन्न भिन्न प्रकार के। तो बाप टीचर सतगुरु रोज की मुरली में आप दे सकते हैं। तो उमंग उत्साह बढ़ाना, हमारी सारी दादियां उमंग उत्साह बढ़ा बढ़ा करके देखो हर प्रकार के कितने वैरायटी प्रकार के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के, लेकिन सबको एकता के सूत्र में बांध करके रखा है, सबका उमंग उत्साह बढ़ा करके। जी जी, तो जितना हम ज्ञान सागर बाबा के पास रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रहेंगे, ज्ञान सागर में हम डुबकी लगाते रहेंगे, उतना ज्ञान के हीरे मोती प्राप्त करते रहेंगे। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करना, यही बाप की दिल पसंद गिफ्ट है, है ना। एक बार बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते बाबा आत्मा बिंदी है ना, बिंदी खिसक जाती है, तो बाबा ने कहा अच्छा बिंदी खिसक जाती है, शरीर देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, फरिश्ता रूप तो देख सकते हो, और फरिश्ता रूप देखेंगे तो लाइट के शरीर में आत्मा आत्मा भी देखने में आएगी। तो चलते फिरते हम अपने आप को लाइट के स्वरूप में, फरिश्ता रूप में, और प्रैक्टिकल में आ जाएं, हम फरिश्ता हैं। तो फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र, फरिश्ता माना पूरी तरह से लाइट, पारदर्शी, अंदर बाहर एक, तब तो कहेंगे ना फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसके मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। फरिश्ता माना सबका सहयोगी, कोई एक नहीं इसका सहयोगी उसका सहयोगी, जहां भी जिसको भी सहयोग की जरूरत पड़ी फरिश्ता पहुंचा, मदद किया और उड़ा। ऐसा नहीं फरिश्ता बोलेगा हाँ आपको मदद किया तो थोड़ा सा हमारा पेपर में नाम आ जाए, फोटो ले लो हमारा नाम, है ना। नहीं नहीं, उसका काम मदद किया और वहां से उड़ा। तो फरिश्ता माना लाइट, कोई बोझ नहीं, पूरी तरह से हल्का, सबका सहयोगी, संपूर्ण अनासक्त, कहीं उसकी दृष्टि वृत्ति है ना आसक्ति जाती नहीं है। तो हम ऐसे फरिश्ते बने हैं। तो चलते फिरते हम ये नियम बना लें कि जब भी हम चलेंगे तो मैं लाइट के शरीर में फरिश्ता बनकर प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे, है ना। कभी शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हुए चल रहे हैं, कभी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाते हुए चल रहे हैं, कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस। जब भी बैठेंगे, भल शरीर कहां भी बैठा है, कुर्सी बैठा है, सोफा पे बैठा है, लेकिन हम कहां बैठेंगे? आत्मा राजा बन करके अकाल तख्त पर बैठेंगे, बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे, बाबा की गोदी में बैठेंगे, है ना। तो ऐसे नियम, जब भी हम देखेंगे, ऐसे आप जोड़ो इसमें, जब भी देखेंगे, जो भी सोचेंगे, जब भी बोलेंगे, जब भी करेंगे, जब भी हम सोएंगे, तो ऐसे ऐसे आप पूरी दिनचर्या का आप बना सकते हैं, उसके साथ जोड़ लो। देखेंगे तो हम गुण विशेषता देखेंगे, आत्मा देखेंगे, बोलेंगे तो उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल बोलेंगे, देखेंगे तो एक अभ्यास और आप कर सकते हैं, जैसे हमारे सामने एक आया, मेरी दृष्टि पड़ते ही आप ये संकल्प करो, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ेगी हमारी दृष्टि से कोई खाली नहीं जाएगा, एक के ऊपर शांति का वाइब्रेशन, दूसरा आया मैं दृष्टि से प्योर वाइब्रेशन दे रहा हूँ, तीसरा आया शक्तियों के वाइब्रेशन दे रहा हूँ, ये भी मनसा सेवा हो जाएगा। तो चलते फिरते हम फरिश्ता स्वरूप बन करके, बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य 97 की अव्यक्त वाणी, जब तुम अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, विश्व के ग्लोब पर बैठ करके परम धाम की स्थिति में स्थित हो करके थोड़ा भी समय सकाश देने की सेवा करेंगे तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा होगी। तो फरिश्ते स्वरूप द्वारा हम सारे संसार की आत्माओं को सकाश दें, परम धाम की स्थिति माना मैं मास्टर ज्ञानसूर ज्ञानसूर से कंबाइंड होकर के सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। तो इस प्रकार से फरिश्ते स्वरूप का हम अलग अलग अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते। बाबा ने कहा कोई तुम 2 घंटे के योगी या 2 घंटे के सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हो। तो चलते फिरते हम बाबा से कंबाइंड रहें, उससे शक्तियां लेते रहें। ओम शांति।